ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नीति और विचार के आधार पर मात्र कम्युनिस्ट एकता होना चाहिए, नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड का जोर। जीवन शैली, वातावरणीय असर और प्रविधि के अत्यधिक प्रयोग के कारण आंख की समस्या बढ़ रही है, विज्ञों का कथन। सिटी रिक्शा चार्ज करने के दौरान करंट लगने से सप्तरी में एक दंपति की मौत। और बलूचिस्तान में बीएलए का फिर बड़ा हमला, पाकिस्तानी अधिकारी शहीद, 23 की मौत, मौके पर ही 13 सैनिक ढेर। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने गंडकी प्रदेश के पूर्व प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुंग के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए स्वर्गीय गुरुंग प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त किया है। आज राष्ट्रपति पौड़ेल शोक संदेश जारी करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक योद्धा स्वर्गीय गुरुंग ने लोकतंत्र स्थापना और पुनर्स्थापना में पहुंचाए योगदान सदा स्मरणीय रहेगी। ये जानकारी राष्ट्रपति के स्वकीय सचिवालय ने दी। इसी तरह नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देवबा ने आज शोक विज्ञप्ति जारी करते हुए गुरुंग के निधन प्रति गहरा दुख व्यक्त किया। गुरुंग का आज सुबह 8 बजे 76 वर्ष के उम्र में अपने निवास पर निधन हुआ है। चितवन नेपाली कांग्रेस के पूर्व सभापति समेत रहे गुरुंग विक्रम संवत 2078 श्रावण 12 गते गंडकी प्रदेश प्रमुख में नियुक्त हुए थे। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि कृत्रिम बौद्धिकता एआई नेपाल विलासिता न होकर समानता, रूपांतरण और न्याय के समाधान के रूप में लिया गया है। चीन को एक संघाई वर्ल्ड आर्टिफिशियल एआई सम्मेलन 2025 को आज संबोधन करते हुए उन्होंने उपलब्धि के पहुंच और समानता पर विचार रखा। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि नीति और विचार के आधार पर कम्युनिस्ट एकता होना चाहिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक पुष्पलाल के जन्म शताब्दी तथा 47वीं स्मृति दिवस के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि विगत के वाम एकता को जनता और कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं के अनुमोदन करने पर भी वह एकता नहीं टिक सकने पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पुष्पलाल द्वारा आगे बढ़ाई गई विचार से निर्देशित होने और उसका अनुसरण किया जाए तो उनके प्रति सच्चा श्रद्धांजलि होगी। गृहमंत्री रमेश लेखक ने विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित तराई मधेश के स्थानीय तहों के प्रमुख, अध्यक्ष और प्रमुख जिला अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया है। आज राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण द्वारा वर्चुअल रूप में आयोजित समन्वयात्मक बैठक में उन्होंने कहा कि पेयजल और सिंचाई के समस्याग्रस्त स्थान के साथ ही प्राथमिकता के आधार पर डीप ट्यूबवेल और डीप बोरिंग जड़ान करने के स्थानों के पहचान के कार्य के लिए समन्वय और सहजीकरण के लिए प्रमुख जिला अधिकारी को निर्देश किया। पेयजल मंत्री प्रदीप यादव ने कहा कि पेयजल का प्रयोग करने बापत उपभोक्ता से शुल्क लेने की चलन का अंत करना होगा। आज पालपा के तानसेन में तानसेन पेयजल उपभोक्ता समिति की 10वां वार्षिक साधारण सभा का उद्घाटन के दौरान मंत्री यादव ने ये बात कही। अभी के जीवन शैली, वातावरणीय असर और प्रविधि का अत्यधिक प्रयोग के कारण सूखा आंख की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने की मद्देनजर विज्ञों ने सावधानी अपनाने का सुझाव दिया है। विज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि इससे जलन, लालिमा, धुंधली दृष्टि और सूखी आंखें हो सकती है। तिलगंगा आंख अस्पताल के रिफ्रैक्टिव सर्जरी यूनिट के विभागीय प्रमुख आंख रोग विशेषज्ञ डॉ. वंदना खनाल ने कहा कि धुआं, धूल, प्रदूषण, एसी और फैन में लंबे समय रहने से सूखा आंख की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए सावधानी अपनाना चाहिए। उन्होंने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसे प्रविधि का अत्यधिक प्रयोग नहीं करने का सुझाव भी दिया। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकमको फोर्जी
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकमको फोर्जी आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको फोर्जी नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। डडेलधुरा में आत्महत्या करने वालों की संख्या में वृद्धि होने के कारण इसके रोकथाम में सरकार वाला पक्ष सक्रिय रूप में शामिल है। एक साल के अवधि में मात्र डडेलधुरा में आत्महत्या करके मरने वालों की संख्या 35 पहुंच गई है। ये जानकारी तथ्यांक जिला प्रहरी कार्यालय डडेलधुरा ने दी। आत्महत्या के घटनाओं में से 4 लोगों पर आत्महत्या दुरुत्साहन का मुद्दा चल रहा है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय डडेलधुरा के प्रहरी प्रमुख डीएसपी सुगंध श्रेष्ठ ने दी। सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत महेंद्र माध्यमिक विद्यालय खलंगा डडेलधुरा में अध्ययनरत विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ के अंतरक्रिया कार्यक्रम में बोलते हुए प्रहरी डीएसपी श्रेष्ठ ने यह तथ्यांक सार्वजनिक किया है। इसके रोकथाम करने के लिए जिला प्रहरी कार्यालय डडेलधुरा ने निरंतर सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत गांव गांव में अभियान संचालन की जाने की जानकारी दी। सप्तरी की रूपनी गांव पालिका वार्ड नंबर 2 पौआ में आज सिटी रिक्शा चार्ज करने के दौरान करंट लगने से एक दंपति की मौत हो गई है। मरने वालों में स्थानीय 45 वर्षीय बालेश्वर खंग मंडल और उनकी पत्नी 42 वर्षीय राम कुमारी शामिल है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी निरीक्षक उदय कुमार राय ने दी। मुस्तांग की लोमानथांग गांवपालिका ने पालिका के भीतर रहने वाले परिवार को विद्युतीय इंडक्शन चूल्हा वितरण किया है। गांवपालिका में केंद्रीय विद्युत प्रसारण के प्रमुख पहुंच होते ही आर्थिक अवस्था कमजोर रहे विकलांगता और ज्येष्ठ नागरिकों के लक्षित कर 210 लोगों को चूल्हा वितरण किया गया है। ये जानकारी गांवपालिका के अध्यक्ष टांसी नोरबू गुरुंग ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ब्लूच लिबरेशन आर्मी BLA की ओर से किए गए हमलों में वरिष्ठ सेना के अधिकारी सहित 23 लोगों की मौत हो गई है। बलूचिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ कई सशस्त्र अभियानों की BLA ने जिम्मेदारी ली है। BLA प्रवक्ता जियंद ब्लूच ने संकेत दिया है कि समूह के लड़ाकों ने मस्तूंग कलात जमुरान बुलेदा और क्वेटा जैसे स्थानों पर पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया और नुस्की दलबंदनी और पंजगूर में ही हमले किए गए। BLA ने बताया कि सबसे उल्लेखनीय मुठभेड़ों में से 22 जुलाई को कलात के कोहाक क्षेत्र में हुई, जहां आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया गया। इस कार्रवाई ने 3 सैन्य वाहनों पर सीधा हमला बोल दिया गया और पीछे हटते सैनिकों को लड़ाकों ने घेर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप 13 सैनिक मौके पर ही मारे गए। इस बीच ब्लूच यकजहती समिति ने एक रिपोर्ट जारी कर राज्य की ओर से बलूचिस्तान में व्यवस्थित और व्यापक दमन को उजागर किया है। BYC की रिपोर्ट के अनुसार 2025 की पहली छमाही में 752 लोगों को जबरन गायब कर दिया गया। इसमें से 181 को बाद में रिहा कर दिया गया, जबकि 25 की कथित तौर पर हिरासत में मौत हो गई। 546 लोगों का ठिकाना अब भी अज्ञात है। मकरान क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग गायब हुए, जहां कार्प्स के जवानों को मुख्य अपराधी बताया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीति और विचार के आधार पर मात्र कम्युनिस्ट एकता होना चाहिए, नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड का जोर। जीवन शैली, वातावरणीय असर और प्रविधि के अत्यधिक प्रयोग के कारण आंख की समस्या बढ़ रही है, विज्ञों का कथन। सिटी रिक्शा चार्ज करने के दौरान करंट लगने से सप्तरी में एक दंपति की मौत और बलूचिस्तान में BLA का फिर बड़ा हमला, पाकिस्तानी अधिकारी सहित 23 की मौत मौके पर ही 13 सैनिक ढेर। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।